لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج میں کچھ سنانے نہیں آیا، پڑھانے آیا ہوں. یہ بیان نہیں ہے، یہ ایک ورک شاپ کہہ لیں آپ، ایک کلاس روم کہہ لیں آپ، تو یہ کلاس روم ہے. آج اس تاجران کے تربیت اجتماع میں ہم نے خاص اہتمام کیا ہے آپ حضرات کے لیے. میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے 15-20 منٹ کے بعد آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا موضوع کیا ہے. کیا موضوع جناب؟ سود کیا ہے؟ یعنی ہم علماء سے، مبلغین سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ سود حرام ہے. بحیثیت مسلمان سود سے ہمیں بچنا ہے، لیکن اگر معلومات نہیں ہوں گی کہ سود کیا ہے، ہم عین ممکن ہے وہ کام کر رہے ہوں جس میں سود پایا جاتا ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ سود حرام ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی یہ وعیدیں ہیں، یہ ہم سب کو پتا ہے. آج یہ موضوع ہوگا کہ سود ہے کیا، سود کیا ہے، مثالیں اور اقسام. سود کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تین چیزیں سمجھنی پڑیں گی. کتنی چیزیں؟ ہم جو رقم کسی کو دیتے ہیں اس کی تین صورتیں، یا تو بطور امانت دیں گے. کیا دیں گے؟ بطور امانت، یا بطور قرض دیں گے، یا بطور انویسٹ دیں گے، یا بطور انویسٹ دیں گے. بطور 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 انویسٹ. کتنی صورتیں ہوئیں؟ تین صورتیں. امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس کی پوری طریقے سے حفاظت کرنا ہوتی ہے. اگر ضائع ہو گئی، خود اگر ضائع ہو گئی، تو کسی قسم کا تاوان یا تلافی نہیں ہے. ہاں، اپنی غلطی سے ضائع کی، تجوری کھول کے سو گیا، دروازے کھول کر سو گیا، اپنی غلطی پائی گئی تو تلافی دینی پڑے گی. اب امانت کب رکھوائی جاتی ہے؟ آپ یاد کیجئے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے ہجرت کا سفر کیا مدینہ منورہ کے لیے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد وہ تمام چیزیں کر دیں کہ جو اہل مکہ نے آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، امین سمجھ کر کہ ہماری یہ چیزیں آگے پیچھے نہیں ہوں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امین ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور تشریف پھر لے کر گئے. آج کل امانت رکھوانے کا رجحان کم ہے. بینک لاکرز کے اندر ہم جو کچھ رکھتے ہیں نا، وہ امانت ہوتا ہے. اگر ڈکیتی ہو جائے تو بینک ذمہ دار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لاکرز کا بینک ذمہ دار نہیں ہوتا. پتا، آپ کے پاس چابی، آپ جو مرضی رکھیں. قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض का मकसूद खर्च करना होता है। अमानत और कर्ज में बड़ा फर्क यह है, कर्ज आप अपनी जरूरियात के लिए लेते हैं ताकि उन जरूरियात को पूरा किया जा सके। कर्ज को संभाल के रखना, तब्दील ना करना, उसमें तसर्रुफ ना करना यह जरूरी नहीं है, वरना कर्ज के मकासिद फोत हो जाएंगे। कर्ज हर सूरत में काबिले वापसी होता है। हमारा बैंकों में कोई भी पैसा पड़ा हो, करंट अकाउंट में, सेविंग में, बैंक वापस देती है नहीं, डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, उसने वापस देना ही देना है। कर्ज के शरीयत में भी यही अहकाम है, कर्ज कर्ज हर सूरत में काबिले वापसी है। लेकिन कर्ज नफा लेने का मौका नहीं है। हमने तीन सूरतें बयान की ना, अमानत, कर्ज और इन्वेस्ट के तौर पर देना। कर्ज है एक नेकी, एक एहसान कि कोई किसी परेशानी में है, आर्जी तौर पर उसकी मदद कर दी जाए ताकि उसे रिलीफ मिले, वो अपनी उस मुश्किल से निकले और फिर आपकी रकम आपको वापस कर दे। इसको हम मजाजी तौर पर अमानत भी बोल देते हैं। कर्ज बहरहाल वाजिबुल अदा रकम होती है। हमारे बाद अवकात ये मशहूर है, कराची में तो मशहूर है, यहाँ का नहीं पता, लोग कहते हैं जी कर्ज हसना वो होता है जो लेके वापस ना लिया जाए। ये दुरुस्त नहीं है। कर्ज हसना वो होता है जिसपे कोई नफा ना लिया जाए, बगैर किसी जाती लालच के सामने वाले को दिया जाए, उसकी मदद के तौर पर, नेकी, एहसान और बिर के तौर पर, वो कर्ज होता है। नफा ले लिया तो सूद बन जाएगा। कर्ज समझ गए जनाब? आगे चलो। चलिए, इन्वेस्ट के लिए रकम देना, इतने कि आप खुद काम कर रहे हैं, और एक ये है कि आप किसी दूसरे को देते हैं। जो रकम बतौर इन्वेस्ट दी जाए उसे कैपिटल या रासुल माल या कैपिटल कहते हैं। अरबी का लफ्ज रासुल माल, अंग्रेजी में कैपिटल कहते हैं। यह रकम किसी दूसरे को नफा नुकसान की बुनियाद पर दी जाती है। शरीयत में इन्वेस्ट के दो ही तरीके हैं, या तो आप जो रकम दे रहे हैं आपका भी माल होगा और उसका भी होगा, उसकी भी रकम शामिल होगी और आपकी भी शामिल होगी। अगर यह सूरत पाई जाए तो इसे पार्टनरशिप या शराकत कहते हैं। और अगर आपका पैसा है, उसकी मेहनत है, इसको क्या कहेंगे? मुदारबत। क्या कहेंगे? या स्लिपिंग पार्टनरशिप, मुदारबत या स्लिपिंग पार्टनरशिप। इन्वेस्ट के अंदर मकसूद नफा होता है। आप दूसरे को इसलिए रकम देते हैं कि वो अगर उसका पैसा नहीं है, मेहनत है, काम शुरू करें, उसका तजुर्बा, आपके पैसे, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए उसको स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। और जो वर्कर है वो काम करता है, नफा जो है वो तनासुब की बुनियाद पर तय होना जरूरी है कि जो भी नफा होगा इतने परसेंटेज से हम लेंगे। परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकती है, कोई मसला नहीं। मुदारबत में शिरकत के अंदर उसका भी पैसा है, आपका भी पैसा है, यहां भी परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है। ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप ये तय करें कि मेरे 50% है तो मैं 50% ही नफा लूंगा, जरूरी नहीं है। एक सूरत का ख्याल रखना है बस। मिसाल के तौर पर जैद और बकर, इन्होंने पार्टनरशिप की। जैद के पैसे 20 लाख और वो काम भी नहीं कर रहा, सिर्फ पार्टनर। अमर के पैसे हैं 50 लाख। किसके पैसे ज्यादा हुए? अमर के ज्यादा हुए। और अमर वर्किंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर नहीं है। इस सूरत के अंदर जैद के पैसे भी कम हैं और वो वर्किंग में भी नहीं है, तो अपने कैपिटल से ज्यादा ये नहीं लेगा। ये एक सूरत है। बाकी सूरतों में अगर ये वर्किंग में है, आमतौर पर वर्किंग वाला ज्यादा मांगता है, तो वो भले 90% ले ले, अगरचे कि उसका 1 लाख शामिल हो और इन्वेस्टर का 1 करोड़ शामिल हो, शरीयत ने कोई रोक टोक नहीं रखी। बाहम जो मुआहदा होगा उसके रूप से परसेंटेज तय करना होगी। शिरकत के अंदर कभी भी फिक्स रकम तय नहीं की जाती कि हर महीने इतने दे देना, ये शिरकत नहीं है। शिरकत नफे और नुकसान की बुनियाद पर होती है। दोनों के पैसे हो तो नुकसान हमेशा कैपिटल के हिसाब से आता है, जिसका जितना कैपिटल है उस एतबार से नुकसान। एक के पैसे हैं और एक की मेहनत है तो नुकसान की काफी तफसील है, यानी ये समझे कि उसमें ज्यादातर नुकसान तकरीबन इन्वेस्टर का ही होता है। अब हमारे आम लेन देन में अमानत और कर्ज की मिसालें, अमानत और कर्ज की मिसालें समझते हैं। हम किसी को उधार में रकम देते हैं, कर्ज के तौर पर देते हैं, उधार के तौर पर देते हैं, ये क्या है? कर्ज है। क्या ये कर्ज है? मैं पेज नंबर 6 पर हूं, पेज नंबर 6 देख लीजिएगा। असल में ये मुश्किल चीज है ना, तो मैंने सोचा कि जब आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे ना सारी भूल चुके होंगे, तो क्यों ना ये चीज आपके पास रहे। पेज नंबर 6 पर आ जाए। वैसे तो यहां लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा साथ साथ रहे। आई कंटेंट बरकरार रहेगा तो ज्यादा बेहतर है। जो रकम हम करंट अकाउंट में जमा करवाते हैं वो कर्ज के हुक्म में, किस हुक्म में? कर्ज और अमानत का फर्क मैंने अर्ज किया था ना, कि जो हर सूरत में काबिले वापसी है वो कर्ज होता है। करंट अकाउंट से मकसूद नफा तो नहीं होता ना, कि तीसरी किस्म में हो। करंट अकाउंट में जो रकम होती है हमारी वो क्या होती है? हमारे यहां बीसी डाली जाती है, कमेटियां और बीसियां डाली जाती हैं। तो जो लोग ये रकम डाल रहे होते हैं वो सवाल पूछते हैं कि जी हमारे पास, हमने महीने के आखिर में देनी होती है, तो ये रकम जमा होती रहती है, हम इसको खर्च कर सकते या नहीं कर सकते? अगर तो इस रकम को अमानत का नाम दिया जाए तो खर्च करना जायज नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ सबको पता होता है कि इसका पैसा रोलिंग में रहता है और आखिर में बिरा ये दे देता है, तो एक दलालतन इजाजत मौजूद होती है उसको खर्च करने की। इसी बिना पर बीसी की जो रकम बीसी या कमेटी डालने वाले के पास जमा होती है उसको हम कर्ज का नाम देते हैं। यही वजह है, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहरहाल उसको देनी है। वो ये नहीं कहेगा फलां भाग गया था और यूं हो गया वो हो गया, बहरहाल उसको देनी होती। अब मिसाल के तौर पर आपके यहां पंजाब में बीसी बोलते हैं कमेटी बोलते हैं? कमेटी बोलते हैं। कमेटी जो है किसी की निकल आई, 25-25 हजार रुपये जमा करवाने थे हर महीने, दूसरे महीने निकल आई 5 लाख रुपए। कितने जमा करवाए थे इसने? 50 हजार। इसको कितने मिल गए? वो 5 लाख में से 50 तो ये दे चुका है, बाकी रकम इस पर क्या होगी? कर्जा होगी। इसका फायदा क्या होगा? जब आप जकात निकालेंगे तो आप इसको ड्यू अमाउंट में शुमार करेंगे, पेएबल अमाउंट में शुमार करेंगे कि मैंने बीसी की मद में 5 लाख ले लिए थे और मैंने जमा करवाए हैं 50 हजार रुपये, तो 4.5 लाख रुपए का तो मैं मकरूज हूं। तो ये जो रकम ज्यादा होती है किस हुक्म में होती है? कर्ज के हुक्म में होती है। आगे चलिए। नौकरी पेशा अफराद का जीपी फंड जमा होता रहता है, वो इदारे के पास तो कर नहीं होता, बैंक में ही होता है। जीपी फंड या प्रोविडेंट फंड वो आपकी सैलरी से मिन्हा होने के बाद, कटने के बाद जमा होता है। तो जहां जमा हो रहा है उनके ऊपर हमारा कर्ज होता है। ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं देंगे हमें, वाजिबुल अदा होता है ना उनके ऊपर। तो ये रकम हमारी होती है कर्ज के हुक्म में, कर्ज के अनुसार। आप लोग मुख्तलिफ मौके पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाते हैं, जैसे घर किराए पर लेना है, दुकान मकान किराए पर लेना है, क्या करेंगे? जो रकम जमा करवाते हैं उसे एडवांस कहते हैं आमतौर पर। तो ये रकम सामने वाला इसका मालिक बन जाता है या वाजिबुल अदा होती है? बताइए, वाजिबुल अदा होती है। जब वो मकान दुकान छोड़ेंगे तो आपने वो रकम वसूल करनी होती है। पहले जमाने में सुबह पंजाब के लोग वो काम नहीं करते थे जो आज कर रहे हैं, पंजाब में ज्यादा, सिंध में अब बढ़ता जा रहा है। ये दुकान मकान पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसका मकसद क्या था? कभी किराएदार 2-3 महीने का किराया लेकर ना भाग जाए, अगर वो घर में रह रहा है तो बिजली के बिल, को खिड़की तोड़ दी हो, को दरवाजा तोड़ दिया हो, कोई नुकसान कर दिया हो, थोड़ी बहुत रकम रहे ताकि इस पर जो वाजिबात आएंगे इस रकम से वो पूरे कर दिए जाएं। इस रकम का क्या हुक्म है? कर्ज का हुक्म है ना, कर्ज से नफा लेना जायज नहीं है, कर्ज से नफा लेना। अब इस एडवांस को जिन मकासद के तहत लिया जा रहा है वो सूद है, मैं उसकी तशरीह आगे जाके करूंगा। फिलहाल इतना समझिए कि ये जो हमारा एडवांस जमा होता है ये क्या है? कर्ज है, हमारे पैसे हैं, उसके ऊपर कर्जा है। किसी के पास रकम रखवाई कि यार ये मेरी रकम संभाल के रखिएगा, प्राइस बांड इसकी मिसाल है। आप अगर किसी के पास प्राइस बांड रखवाएंगे तो क्या उसको इजाजत देंगे वो नंबर तब्दील कर दे? अमानत का यही हुक्म होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको खर्च नहीं किया जा सकता, उसमें कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती। तो अगर आपने इस तौर पर रखवाई है तब्दील नहीं करना तो यह अमानत है। आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आता है और अपना सामान भूल जाता है, यह कर्जा नहीं है। कर्जा एक एग्रीमेंट होता है, बाहम रजामंदी से होता है। ये जो भी भूल जाएगा ये अमानत होगी। क्या होगी? अमानत होगी। इसको फुकहा की जबान में लुकता कहते हैं, मतलब गिरा पड़ा माल कहीं से मिला, लावारिस माल मिला, लोग माले मुस्त समझ कर रख लेते हैं। अगर कोई मुस्तहिक ज़कात नहीं है तो वो नहीं इसको इस्तेमाल कर सकता, खर्च उसको नहीं कर सकता। उसके पास ये अमानत होगी, उसको हिफाजत करनी पड़ेगी, संभाल के रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संभाल के रखना पड़ेगा। ये मैंने बयान की है एक तमहीद, और थोड़ी सी इस बात की वजाहत, कर्ज अलग रकम होती है, अमानत अलग रकम होती है, हम किसी को इन्वेस्ट के लिए दें वो एक अलग रकम होती है। इन्वेस्ट बहुत हॉट टॉपिक है, इन्वेस्ट कैसे किया जाए, क्या तरीका हो, नुकसान के क्या मामला रखे जाए, परसेंटेज के मसाइल, ये मसाइल वो मसाइल। आज हमारा मौजू इन्वेस्ट नहीं है, आज हमारा मौजू सूद। सूद की दो अकसाम है, कितनी अकसाम है? पहली किस्म कौन सी है? कर्ज के बदले नफा हासिल होना, यह सूद है। इसके बदले कर्ज के बदले हासिल होने वाला इजाफा या उधार की बाज सूरतों में वो सूद पाया जाता है, यह है पहली किस्म। सूद की जो दूसरी किस्म है वो ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जब उनको बाटर सिस्टम के तहत आप तबादला करेंगे तो सूद पाया जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जब आपने सिर्फ उन चीजों को लेन देन किया है तो सूद पाया जाएगा। ये दूसरी जो सूरत है इसकी फोटो, तस्वीर, किस्में सब लिखी हुई हैं, आगे आ रही हैं। पहली किस्म आसान है कि जहां कर्जे पर नफा लिया जाए वो सूद होगा। क्या होगा? सूद होगा। फुकहा इकराम ने इसकी तारीफ क्या बयान की है? अर्रिबा हुल फ़ज़्ल मुस्तहक़ लिअहद अल-मुताअक़्क़िदैन फ़िल मुआवज़ाति अल-ख़ाली अन इवज़ शुर्रिता फ़ीही। सूद उस इजाफे को कहते हैं, सूद उस इजाफे को कहते हैं कि जो इजाफा मशरूत हो, कंपलसरी हो कि ये इजाफा करना ही करना है, और वो इजाफा किसी अगेंस्ट से खाली हो, किसी चीज के बदले से, मुआवजे से खाली हो। थोड़ी सी मुश्किल है, एक मिनट में समझ में आ जाएगा बस आपको। अब इस मिसाल को समझिए, एक शख्स ने 1,00,000 रुपए बतौर कर्जा दिया और वापस कितने लिए? 1,10,000। जब 1,10,000 वापस लिए और उनका तय था कि जनाब आपने जब वापस देने हैं तो 1,10,000 वापस देने हैं, 1,00,000 के बदले 1,00,000 आ गए, 10,000 किस चीज का बदला है? किसी चीज का बदला है नहीं है। तो सूद की एक मोटी सी तारीफ यह है, सूद की कई अकसाम है ना, एक किस्म की तारीफ यह है कि जिस रकम के अंदर कोई अगेंस्ट ना पाया जाए, कोई बदला ना पाया जाए, वो सूद है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो किस्तों वालों के पास जाता है, किस्तों का काम करता है ना, और उसको वो चीज मिलनी है 1,25,000 में, कैश में वो मिलनी है 1,00,000 रुपए में, समझ गए भाई। इसका दोस्त ये कहता है कि तुम 25,000 रुपए नफा दे रहे हो उस आदमी को, तुम ऐसा करो ये मुझसे कैश ले लो 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए की जगह चीज खरीद लो, और तुम मुझे बजाय 1,25,000 के 1,10,000 लुटा देना। इसके दोस्त ने बजाय तो इसके साथ एक ऐसा काम किया कि 15,000 के नुकसान से बचा लिया, 15,000 का उसको बेनिफिट पहुंचा, लेकिन हकीकत में इसके दोस्त ने जो 1,00,000 देकर 1,10,000 रुपए लिए और 10,000 रुपए वापस जो इजाफा लिया, ये उसने सूद लिया है। अब अगर थोड़ी सी तब्दीली कर ली जाती, वही कहता है कि आपको क्या खरीदना है, आपको अच्छा 2-3 आइटम खरीदने हैं, LCD खरीदनी है उसको, मोटरसाइकिल खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, ऐसा करते हैं पहले मैं खरीद लेता हूं, आप पसंद कर लें दुकान से, मैं आपके साथ चलता हूं, मैं वो चीजें कैश में खरीद लेता हूं। तो उसने ये 2-3 आइटम खरीद लिए और उसको कहा कि ठीक है, आप ये मैंने जो माल है आपको 1,10,000 में बेचा, अब जो इजाफा हुआ है 10,000 का, वो किस चीज के बदले है? माल के बदले। पहली सूरत में तिजारत का मुआहदा दोनों के दरमियान नहीं हुआ था, कैश का मुआहदा हुआ था कि तुम ये पैसे ले जाओ, 1,10,000 दे देना। दूसरी सूरत के अंदर उसने एक माल खरीदा, जरूरी है कि खरीदना पाया जाए, और उसको ना कि तुम खरीद के ले आओ, नहीं, खरीदने के अंदर हमेशा दो पार्टियां होती है ना, एक बेचने वाला खरीदने वाला, तो पहले ये खरीदारी के तकाजे पूरे करेगा, माल उस दुकान से खरीदेगा, खरीद लिया, अब खुद एक पार्टी बन के वो माल बेचेगा, बेच दिया, अब इसने माल बेचा है तो कोई नई चीज थोड़ी की है, आप रोजाना यही कर रहे होते हैं, होलसेल में लेते हैं, रिटेल में बेचते हैं, तो तिजारत इसी चीज का नाम है ना, लेकिन आप नफा लेते हैं माल की बिहाफ पर, तिजारत की बिहाफ पर। जब कुरान करीम फुरकान हमीद ने सूद की हुरमत नाजिल की तो कुफार ने बड़ा मजाक उड़ाया, कहने लगे लो जी फर्क क्या हुआ, एक ही तो बात है, हम भी नफा लेते हैं तुम भी नफा लेते हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا, कहने लगे क्या फर्क है दोनों में, एक ही है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया أحل الله البيع, بيع का तर्जुमा है, बे का तर्जुमा है तिजारत, ट्रेडिंग, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है, तिजारत पाई जाएगी तो हलाल है, वह हर्रम रिबा, सूद को हराम करार दिया है। तो नो डाउट कि तिजारत और सूद का जो मूड ऑफ एक्टिविटी है मुख्तलिफ है, तिजारत को ट्रेडिंग कहेंगे और उसको पैसा देना कहेंगे, तो वो तमाम सूरतें, वो तमाम एग्रीमेंट जो तिजारत कहलाती हैं उससे नफा लेना जायज है। मैं नफा लेने की दो ही सूरतें रखी है शरीयत में, या आप अपनी मेहनत पर नफा लें, जैसे आप कोई ब्रोकर है, कमीशन एजेंट है, हलाल है कमीशन एजेंट का काम, एज ए रिसाले से साबित है। कोई मुलाजिम है तो ये अपनी सर्विस का जो है वो अपनी खिदमात के बदले में पैसे लेते हैं। वो खिदमात शरीयत ने जिनको खिदमात मोतबिरा करार दिया है, वरना तो बैंक भी कहता है हम आपको खिदमात फराम करते हैं, आपको सर्विस फराम करते हैं। बैंक की कुछ सर्विस ऐसी है ठीक है, उसमें मुआवजा बनता है, लेकिन पैसे के बदले मुआवजा नहीं बनता। जहां कर्ज पाया जाएगा उस पर नफा लेने की कोई सूरत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। सूद की दो किस्में हमने बयान की, एक जहां कर्ज पर नफा लिया जाए और एक मखसूस चीजों में। मैं मिसाल दे देता हूं, एक आदमी के गांव में दाने खत्म हो गए गंदुम, या उसके उसका काम है गंदुम का, अनाज मार्केट में होता है। दूसरे आदमी को कहता है कि तुम ऐसा करो मुझे 50 मन गंदुम दे दो, और जब मेरे पास गंदुम आएगी मैं तुम्हें 60 मन दे दूंगा, तो मुझे 50 मन दे दो उसके बदले में मैं तुम्हें 60 मन गंदुम दूंगा। तो ये यहां कर्ज नहीं पाया जा रहा, ट्रेडिंग पाई जा रही है। लेकिन ये ट्रेडिंग की ये सूरत सूद है। सूद की दो किस्में की हमने, एक कर्ज वाली और एक इस तरह की बाटर सिस्टम वाली। अभी हम कर्ज वाले सूरत पर चलते हैं। सूद की पहली किस्म कर्ज पर नफा की सूरतें, कर्ज पर नफा की सूरत। पहली किस्म देखें क्या आती है हमारे सामने, कर्ज पर नकदी नफा लिया जाए। वही जो सूरत मैंने अभी आपके सामने बयान की, 1 लाख किसने दिए, 1,10,000, 1,01,000, 1,02,000, 1,01,000 भी लेगा ये भी सूद होगा। अब जो नफा लिया वो किस सूरत में लिया है, पैसों में लिया है। नफे की दूसरी किस्म कौन सी है कि कर्ज पर हाथ में तो कुछ ना आए लेकिन कुछ सहूलतें मिल जाएं, कुछ बेनिफिट मिल जाएं। कर्ज ना दिया होता अगर हमने सामने वाले को, कर्ज ना दिया होता तो वो बेनिफिट्स वो सहूलतें हमें कभी भी ना देता। हदीस पाक में फरमाया गया कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफियतन फहुवा रिबा, कर्ज से जो भी नफा उठाया जाए वो सूद है। बहुत सारे लोगों की गलत फहमी होती है कि जनाब हम पैसे थोड़े ले रहे हैं, हमने तो पैसे लिए ही नहीं है, हराम है हमारे ऊपर तो पैसा लेना। लेकिन बहुत सारे हाजी नमाजी दाढ़ी वाले उस दूसरी किस्म में इसलिए मुब्तला होते हैं कि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि ये भी सूद है, वरना वो एक लम्हा नहीं लगाते उसको छोड़ने में। तो यही वजह होती है कि इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है। कौन सा इल्मे दीन? किसान के लिए किसान के मामलात, ताजिर के लिए ताजिर के मामलात, मजदूर के लिए मजदूर के मामलात, जो जिस शोबे से वाबस्ता है उसके मुतालिक इल्म हासिल करना फर्ज है। ये शरीयत की हमारे ऊपर तख़फ़ीफ़ है। शरीयत ने यह जरूरी करार नहीं दिया कि आप पूरा दीन पढ़ना फर्ज है, नहीं। अगर आपने शादी कर ली है तो आपको पता होना चाहिए किन अल्फाजों से तलाक हो जाती है। ये ना हो तलाक हो गई और आप हरामकारी करते रहें और बीवी के साथ रहते रहें, आपको पता ही ना हो। अदमे इल्म माफी का सबब नहीं है। अदमे इल्म, इल्म ना होना माफी का सबब नहीं है, बल्कि दोहरा गुनाह है। कि एक तो आप जिस चीज से वाबस्ता थे आपने उसके मुतालिक इल्म हासिल नहीं किया, दूसरा ये कि वो गलती की। तो बाद ये लोग ये कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था 3 तलाक हो जाती है इन अल्फाजों से, हम तो साथ रहते रहे। ऐसे ऐसे केस भी आए हैं कि 5-5 बच्चे हैं, फिर पता चलता है कि जनाब 6 तलाक हो जाती है। तो शरीयत ने एक बड़ा ही हुसन पर मुश्तमिल एक तरीका हमें दिया, जिस चीज से जो मुतालिक है उसका इल्म हासिल करें। अब हमारे पास कुछ दिन पहले मसला आया, बल्कि पिछले 1 महीने में 2 मसले आ चुके हैं 2 मुख्तलिफ अतराफ से। बच्चे को 2.5 साल की उम्र तक अगर कोई औरत दूध पिला दे तो वो औरत उसकी मां बन जाती है। वो औरत मां बन गई उस औरत की औलाद बेटा बेटी दूध पीने वाले के भाई बहन हो गए, उस औरत की माँ नानी हो गई, उस औरत की बहनें खालाएं हो गई। जिस तरह खूनी रिश्ता कायम होता है तकरीबन उसी तरीके से दूध पीने की वजह से वही रिश्ते कायम हो जाते हैं, निकाह हराम हो जाता है। पता ही नहीं था कि निकाह इस तरह हराम होता है। एक तो ये वजह होती है, एक क्या वजह होती है, बचपन की बात थी, किसी एक दो को पता है, बाकियों को पता नहीं चला, निकाह हो गया, सब कुछ हो गया, पता चला कि ये तो इसकी दूध शरीक बहन है, उनको 2 साल बाद अलग होना पड़ा। तो यूं इस बात का एहसास पैदा करना जरूरी है कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस काम में आप इन्वॉल्व हैं, शरिया लॉ इस हवाले से क्या कहता है, शरिया गाइडेंस क्या आपने हासिल की है। बहुत सारी यूं समझिए आप कि 70-80% ऐसी बातें होती हैं कि थोड़ा सा तरीका बदल लिया जाए, बस मामला आसान हो जाते हैं। ये जो किस्म है कर्ज पर नफा लेना, नकदी नफा लेना, आइए इसकी सूरतें हम देखते हैं। कर्ज पर नकदी नफा की पहली सूरत, बैंक जो कुछ नफा देते हैं, कमर्शियल बैंक, इस्लामिक बैंकिंग की मैं बात नहीं कर रहा, और ना इस्लामिक बैंकिंग से अभी तक हमने इत्तेफाक किया है, इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन उसको हम सूदी करार नहीं देते, उसके कुछ चीजों पर हमें तहफ़ुज़ात हैं लेकिन उसको हम सूदी नहीं कहते। हाँ इतना जरूर है कि हमने इस्लामिक बैंकिंग पर जो रिसर्च की है, बात चीजें ऐसी पकड़ी हैं कि जनाब आप यहां तो सूद दे रहे हैं। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर सबसे बड़ी जो ट्रेडिंग होती है वो सुकूक के अंदर होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं खरबों के अंदर, और ये सारे इंश्योर्ड होते हैं सूद पर, लेकिन जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने सूद करार नहीं दिया। फिलहाल कमर्शियल बैंकिंग की बात हो रही है, कमर्शियल बैंकिंग जिस नाम पर भी नफा देती है, सर्टिफिकेट के नाम सर्टिफिकेट है जनाब फला फला फला, जनाब सेविंग अकाउंट है जनाब फला अकाउंट है जनाब फला अकाउंट है, तमाम की तमाम सूरतें सूद पर मुश्तमिल होती हैं, और आपका जो पैसा जमा हो रहा है सेविंग अकाउंट में भी वो नफे नुकसान की बुनियाद पर पैसा जमा नहीं हो रहा होता, फिक्स नफा होता है, बैंक जो चाहे करे, कितना लॉस हो कितना उसको नुकसान हो कितना फायदा हो, मशरूत पहले से जो तय हो चुका है वो वही नफा देगी, और जो रकम हमारी जमा होती है वो क्या होती है, कर्जा होती है बैंक के ऊपर। दूसरी कमर्शियल बैंकिंग से जब आप कोई गाड़ी लेते हैं कोई उसका डील करते हैं, साफ लिखा होता है कि जनाब आप जब इसकी किस्त देंगे इतनी आपकी असल अमाउंट होगी, और इतना काइबोर रेट के एतबार से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आज इतना काइबोर रेट है और जब भी जितना होगा आपको उतना सूद देना पड़ेगा, तो उस साफ लिखा होता है सूद हम ले रहे हैं, कैसे कह सकते हैं हमको सूद नहीं है, आप भी इसे इख्तलाफ नहीं करेंगे। तीसरी सूरत जनरल इंश्योरेंस के अंदर तो ये होता है कि उसने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई है, साल बाद वो रकम पूरी, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना, कोई हादसा नहीं हुआ तो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो हमारी रकम जमा होती है वो एक पॉलिसी बनती है उसकी, जनाब 20 साल पॉलिसी है 15 साल पॉलिसी है, और मर गए तो मिल जाएगी, वरना ये बात अंडरस्टूड होती है कि उतने साल पूरे होने पर वो इतने गुना ज़्यादा होकर मिलेगी, वो जो भी नफा है वो नफा सूदी नफा है। लाइफ इंश्योरेंस के अकाउंट में जो भी पैसा ऐड होता है, इजाफा होता है, ज्यादा होकर मिलता है, वो सूदी रकम होती है। अब इस तरह के बहुत सारे जो लोग हैं एजेंट इनके, या छोटे छोटे बुकलेट छपे होते हैं कि फला आलिम साहब ने हमें कह दिया हलाल है, आला हजरत ने काम शरीयत में लिख दिया जनाब हलाल है, आप ले सकते हैं कोई हर्ज नहीं है। अफसोस की बात है कि दुकान चलाने के लिए शरीयत को बदनाम करते हैं। आला हजरत ने काफिर की कंपनी के बारे में लिखा था, आला हजरत जब थे अंग्रेज की हुकूमत थी, बल्कि वो जा रही थी तकरीबन, अंग्रेज की हुकूमत जा रही थी, इदारे उसके थे कुफार के थे, आला हजरत ने उनकी बात की थी, और आज हमने भी इजाजत दी जो लोग यूके में यूरोप में रहते हैं और रहने के लिए घर जो है काफिर कंपनी से अगर वो मॉर्गेज करते हैं तो रहने के लिए घर की हमें इजाजत दी है। मुसलमान और काफिर के दरमियान सूद नहीं पाया जाता। काफिर को आपने पैसे दिए 1 लाख, 1,10,000 ले सकते हैं, लेकिन इसको सूद ना कहें, इसको नफा कहें। पैसे आपने दिए और नफा आपने लिया, यह सूरत जायज है। पैसे आपने कर्जा लिया और नफा उसको दिया, यह सूरत जायज नहीं काफिर के साथ भी, समझे भाई। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट एक पूरा हाथी है, बहुत बड़ा एक निजाम है। शेयर मार्केट के अंदर कुछ सूरतें ऐसी हैं कि उनके सूद होने में कोई शक नहीं है। जैसा कि शेयर मार्केट के अंदर जो बदले का काम होता है, आपके पास पैसा नहीं है, बैंक खड़ा हुआ है, हमसे पैसा लेना। ब्रोकरेज हाउस होते हैं शेयर मार्केट के अंदर, वो खड़े होते हैं, हम पैसा देते हैं। जितना सूद बैंक नहीं लेते होंगे उससे कई गुना ज्यादा ब्रोकरेज हाउस लेते हैं। तो कराची में स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें 200 ब्रोकरेज हाउस है, और कोई भी शेयर जो है वो लेना और देना जो होता है ये ब्रोकरेज हाउस के बगैर नहीं हो सकता। एक तो ये आपको पैसा आप ले, उससे आपका कमीशन, आपसे कमीशन लेगा, और जायज बात का कमीशन लेना जायज है। बदले की सूरत ये होती है, जिसको बदले का सूद, बदले वाले शेयर कहते हैं, कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको लगा डील बड़ी अच्छी है, कहता ले लो हमसे पैसे और लुटा देना, पर डे इतना सूद होगा। तो बदले की जो सूदें जितनी भी हैं वो सूद पर मुश्तमिल होती हैं। इसी तरीके से एक शेयर होता है प्रीफ्रेंस शेयर, उर्दू में कहते हैं तरजीही हिस्स। इसके अंदर कंपनी ये कहती है कि जनाब हमारे 50 लाख शेयर जारी हुए हैं, वो सारे बंदे एक तरफ, लेकिन हमने सबसे पहले आपको इतना नफा जरूर देना है, बाकियों को नहीं देना, आपको इतना जरूर देना है, फिर हम बाकियों को देखेंगे। तो ये भी जो प्रीफ्रेंस शेयर के ऊपर नफा मिलता है, ये भी एक सूदी नफा है। कंपनी नफा नुकसान की बुनियाद पर नहीं देती, एक फिक्स नफा तय करके दे रही होती है। आम जो नफा होता है शेयर का, वो नफे नुकसान की बुनियाद पर होता है। अगर किसी ने बैंक के शेयर खरीदे हुए हैं तो बैंक ने क्या काम करना है, कहां से कमाना है, सूद से कमाना है। किसी ने पेट्रोलियम कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं तो उसने पेट्रोल बेच के कमाना है, फर्क तो रहेगा ना। ये अलग बात है कि शेयर के अंदर बहुत डिटेल है, बहुत तफसील है, बहुत सारे मौके पर जायज नाजायज मामला मौजूद हैं, लेकिन खास सूद जहां पाया जा रहा है वो दो सूरतें मैंने आपके सामने रखी है। आगे चलते हैं। आप में से हैं कोई हार्डवेयर वाले, हार्डवेयर जिनकी फील्ड हो, ये मिसाल बड़ी दर्दनाक मिसाल है। यानी एक होता ना दीनी जहन, एक यहूदी होगा ना, यहूदी कोशर गोश्त खाएगा, इसके अलावा कभी भी नहीं खाएगा। यूरोप अमेरिका के हर स्टोर पर कोशर गोश्त मौजूद होगा कि जनाब ये वो गोश्त है जो यहूदी ने ज़बह किया है, उसको अपने जो दीनी तालीमात हैं उस पर नो कंप्रोमाइज होता है, नो कंप्रोमाइज, छोटी सी कम्युनिटी अलग। लेकिन यहां मुसलमान मुल्क के अंदर मुस्लिम अफराद, मुसलमान लोग ऐसी पॉलिसियां बना देते हैं, ऐसी स्कीम लेकर आते हैं जो सूद पर मुश्तमिल होती है। हालांकि इन्होंने खुद बनाई है। एक बंदा कहता ना जी वो बैंक है, इतना बड़ा इदारा है, तो हम ये कहते हैं कि आप दो अफराद मिलकर कोई काम करना चाहते हैं हमारे पास बैठ जाएं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 12 सूरतें बयान कर देंगे हम। बाजुकात होता है कि हम कहते हैं जी आप ऐसा करें, ये जो है वो उसके साथ दुकान पे चले जाएं, कहेगा जी उसको तो पता चल जाएगा मैं माल कितने का लेता हूं, हमारे पास उसका भी हल है। हम कहेंगे अच्छा आप यूं कर लें, कहेगा मुझे उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी, हम कहीं यूं कर लें, यूं कर लें। तो जहां आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरा जो ये काम है ये गलत हो रहा है, तो उसका मुतबादिल मौजूद होता है। दो अफराद जब निजी तौर पर कोई मामला करते हैं, ऑप्शन खुले होते हैं, इदारों के साथ ऑप्शन खुले नहीं होते। वो कहते हैं हमारी पॉलिसी हमें यही करना है। लेकिन छोटे छोटे इदारे कि जो इदारे तिजारत पर मुश्तमिल है, खास तिजारत कर रहे हैं, उन्होंने अपने काम के अंदर सूद दाखिल कर दिया है। अब क्या होता है कि पैंट के डब्बे में टोकन डाल दिया गया है कि जनाब असल फायदा तो यह है कि वो जो रंग वाला है ना, जो रंग करता है दीवारों पर, यह रकम वो मालिक से मांग लेता है, ये रकम दे दो ना मुझे। और फिर वो रंग वाला जहन बनाता है कि वो रंग बड़ा अच्छा है, वो लेके आइएगा। उसको पता है कि वो कंपनी ज्यादा पैसा डालती है। चलो पैसा डालना कोई मसला नहीं है, शरीयत में कोई मना नहीं है। आप किसी मॉल में जाते हैं, मॉल वाला कहता है जी हम आपको पॉइंट देंगे, आप खरीदारी करें आपको पॉइंट मिलेंगे, फिर उन पॉइंट से आप खरीदारी कर सकते हैं। ये इनाम है। क्या ये इनाम है? वो दें या ना दें कंडीशनल मामला नहीं है। इसी तरीके से पैंट के डब्बे में कोई पैसा डालना, मिसाल के तौर पर 500 का 5000 का डब्बा है और उसमें 500 रुपये डाल दिए, सबको पता है कि अब ये डब्बा जनाब 4500 का है। जब 500 डाल देगा 5000 के डब्बे में, तो आप उस डब्बे की कितनी कीमत रह जाएगी? 4500। इसमें कोई कबात नहीं है, शरीयत से कोई तरीका नहीं टकराता, यहां तक तो बात ठीक है। और फिर वो डब्बे में वो टोकन निकले और दुकानदार से आकर ले जाए, सवाल ये पैदा होता है कि दुकानदार ने तो कंपनी का सील पैक डब्बा बेचना था, उसने बेच दिया, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब वो जो चाहे कर सकता है, वो क्यों बाउंड है कि जनाब वो वापस आए और दुकानदार अपनी जेब से पैसे दे उसको? चलो ठीक है, यहां तक भी जायज है, दे दे वो जेब से पैसे। अब ये पैसे दुकानदार कंपनी से वापस लेता है, कंपनी से बात चीजें ऐसी होती है कि मैं अभी परसों आया हूं यहां पर, तो जहाज में मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे, गुफ्तगू होती रही। अब हम मौलाना लोग हैं, मुझे क्या पता ये कौन है। फिर पीछे से कोई साहब आया तो पता चला ये कोई अदाकार है। मैंने दावत दी बयान की सूद पर मजूर, फिर मौलाना साहब सूद से बचना कहां मुमकिन है? आप जहाज में बैठे भी सूद पर चल रहा है, ये जो लोग काम कर रहे हैं इनको भी सूद पर तनख्वाह मिल रही है। बाज़ वक़्त क्या होता है, हम बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद करता है ना, उस तरीके से आंखें बंद कर लेते हैं कि जहां बचना होता है हम अपने आप को कहते हैं नहीं जी हमने नहीं बचना, सारा गलत हो रहा है, सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, गलत करो गलत करो। ऐसा नहीं होता। जो एक आम कस्टमर आया, उस आम कस्टमर और दुकानदार के दरमियान कोई गलत वायदा नहीं हुआ, कोई गलत मायदा नहीं हुआ। भाई हम इस हाल में बैठे हुए हैं, अब अगर ये हाल इस मालिक ने सूद पर पैसे लेकर खरीदा है तो ये उसका मसला है, हमारा मसला तो नहीं है। शरीयत इसको आराम नहीं कहती। तो जायज और नाजायज कहने का दारोमदार किस पर है? शरीयत पर। लोग कहते हैं जी पैसे आप ले रहे हैं, ये आप ले रहे हैं, ये नोट आप ले रहे हैं, सब सूद है, सब आराम है। भाई ये बातें उस वक्त आपको याद आई जब आपको कहा ये काम सूद है, तो आप फट पड़े मेरे काम को सूद कैसे बोल दिया, मैंने भी बोलना आपको सुनाना है कि सारा ही गलत हो रहा है। ये एक यू समझिए कि आमियाना तरीका है, हकीकत पर मुश्तमिल तरीका नहीं है। तो दुकानदार और एक आम ग्राहक के दरमियान जो मामला, वो तो ठीक है, चीज बिक गई, चीज ले गया वो बंदा। अब इस दुकानदार ने जब वो टोकन वाले पैसे कंपनी से लेने होते हैं, जमा होते गए, 1,00,000 रुपए जमा हो गया, तो क्या इस 1,00,000 रुपए के बदले दुकानदार ने कंपनी से कुछ माल खरीदा था? बताइए, किसी माल के पैसे देने? ये ऐसा ही है कि आपके पास खुले पैसे ना हो, आपका पास वाला आ जाए, मुझे हाजी साहब जरा 500 रुपए देना, और वो हाजी साहब से 500 रुपए लेके अपने गाहक को देके फारिग कर दे, यह हवाला कहलाता है। या आप किसी पार्टी को चेक देना है, आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने दोस्तों को यार आप जरा चेक दे दो, तो ये उसने आपके ब्याह पर दिया है ना, तो ये कर्जा है। ये आपका बराबर वाला दुकानदार आपसे 500 रुपये ले जाता है, वो वापस देता है ना आपको? 500 ही देता है, ज्यादा देता है? 500 ही देता है। लेकिन कंपनी इन दुकानदारों को ऊपर पैसा देती है, इसलिए कि अगर हम इनको पैसे नहीं देंगे तो ये ग्राहकों को मना कर देंगे कि हम आपको कैश नहीं दे रहे। ग्राहक को रंग का डब्बा बेचना तिजारत थी, लेकिन ग्राहक को टोकन के पैसे देना तिजारत नहीं है। ये दुकानदार ने कंपनी की ब्याह पर कर्जा दिया है, कंपनी की ब्याह पर। ठीक है, जितना दिया उतना वापस ले, जायज, कोई मसला नहीं है, कर्जा लेना जायज है। लेकिन दुकानदार कंपनी से जब पैसे लेते हैं तो ज्यादा लेते हैं। रंग के होलसेलर, हार्डवेयर का काम करने वाले ये काम कर रहे हो। एक साहब थे, उनकी उम्र थी कोई तकरीबन 45 साल होगी। मैंने एक मतलब मध्य चरण पर मसला बयान किया और वो एक बहुत बड़ी कंपनी के डीलर थे, मेरे पास आए परेशान होके, हम तो ये काम कर रहे हैं, कसूद है। कंपनी के मालिक के पास चले गए, कहा जी हमारा तो ये निज़ाम है, मार्केटिंग है, इस तरीक़ाकार है, सेल वालों से बात करें। उसने कुछ करना नहीं था, उसने कहा कि मैं कोई पैसे नहीं लूंगा आज के बाद। ठीक है, मैं टोकन के पैसे दूंगा लेकिन पैसे कोई नहीं लूंगा वापस। उस मर्द मुजाहिद ने हमसे सवाल किया, मुफ्ती साहब ये बताएं अब तक जो मैंने ये पैसा लिया उसका क्या करूं? हमने कहा आपके लिए वो रकम हलाल नहीं थी, बगैर सवाब की नियत के किसी मुस्तकिल ज़कात को वो रकम दो, खुलासी उस रकम से हासिल करना जरूरी है, तौबा भी और खुलासी भी। ये बात उसके और मेरे दरमियान थी। एक मुफ्ती भी जो है ना डॉक्टर की तरह राजदार होता है, लोग घर के मसाइल, कारोबार के मसाइल बयान करते हैं। उसने खुलासी हासिल कर ली और एक दिन एक एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला की मफ़रत फरमाए। फिर मैंने अपने फेसबुक पर उनका यह अमल बयान किया कि उन्होंने पैसे को कुछ छोड़ता नहीं है, आ जाए ना एक दफा निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने इतनी हिम्मत पकड़ी कि पिछले कई सालों में जो बहुत भारी रकम बन रही थी, डीलर थे वो, सप्लाई करते थे, ठीक ठाक कंपनी से लेते थे, पता नहीं कितने लाख रुपए उन्होंने बगैर सवाब की नीयत पर सदका कर दी कि ये सूद की रकम थी, मैंने नहीं लेनी। और देखा जाए बहुत नेक आदमी थे, तो उनकी नेकियों में ज़ाती तौर पर यह गुमान करता हूं कि वो जो एक नेक और परहेजगार आदमी थे, मरने से पहले अल्लाह ताला ने इस बुराई से निजात दे के उन्हें अपने पास बुलाया। तो नेक जो अमाल है उनकी बरकत न जाने कहां कहां जाहिर होती है। आगे आते हैं, हमारे साथ डिफरेंट मार्केटों में लोग बैठे हैं और एक प्राइस बॉन्ड वाले भी बैठे हैं हमारे दरमियान। प्राइस बॉन्ड का काम जायज है, प्राइस बॉन्ड एक एसिड है। क्या है? एक एसिड है। आजकल टिकट का दौर कम हो गया, पहले जमाने में क्या होता था, चाइना टिकट भेजेंगे तो इतना महंगा मिलेगा, अमेरिका भेजेंगे तो इतना महंगा मिलेगा। एक ही टिकट होता था मुरब्बा साइज का, हैं, थोड़ा बहुत चौड़ा भी हो जाता होगा, तो उस कागज के टुकड़े के डिफरेंट उसकी कीमतें होती थी। आज हम देखते हैं स्टाम्प पेपर, एक ही A4 का पेपर होता है ना, वही 50 का मिलता है, वही 500 का मिलता है, वही इससे ज्यादा का मिलता है। तो ये पेपर की कीमत होती है, क्योंकि ये आम पेपर नहीं है, उसकी एक वैल्यू है। ठीक है, और प्राइस बॉन्ड के ऊपर जो नफा मिलना होता है क्या वो कंडीशनल होता है? बताइए, सूद की तारीफ की थी ना हमने, मशरूत नफा, कंडीशनल नफा। प्राइस बॉन्ड का नफा इसी तरीके से है कि एक मॉल वाला, एक सुपर स्टोर वाला कहे कि जो 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 मुझसे खरीदारी करेगा, मैंने एक बाइक भी रखी हुई है, मैं बाद में कुरानदाजी करूंगा, किसी एक को बाइक भी मिल जाएगी। तो क्या आपने शर्त पर माल खरीदा था कि आपको बाइक मिलेगी? कंडीशन नहीं है। बल्कि ये एक इनाम की सूरत होती है, किसी एक को मिल जाएगी। जो भी प्राइज बॉन्ड खरीदता है वो एक एसेट खरीदता है। क्या खरीदता है? एसेट खरीदता है। इसलिए हम कहते हैं अगर कोई ऑन पर भी बेचता है 1500 का प्राइज बॉन्ड, 1800 का बेचता है, उसने एक माले तजारत बेचा है, नो प्रॉब्लम, शरीयत में मना नहीं है। स्टेट में अगर मना करता है, सुना है मैंने आज तक बहुत सारे लोगों ने कहा है मुझे ये कानून जायज नहीं है, तो मैंने कहा कानून का मसला तो हमें नहीं पता, शरीयत में मना नहीं, कानून रोकता है तो रुकना चाहिए। अब उस पर जो इनाम निकलता है वो इनाम है, इनाम कभी भी मशरूत नहीं होता, कंडीशनल नहीं होता कि ये आपने 1500 खरीदा है आपको इतने पैसे मिलने ही मिलने, ऐसा है नहीं है। क्या लॉस होता है कोई? लॉस भी नहीं है, लॉस नहीं होता तो जुआ भी नहीं है। प्राइज बॉन्ड जायज ही है, लेकिन पिछले दिनों एक नया प्राइज बॉन्ड निकाला गया है, प्रीमियम बॉन्ड 40,000 रुपये वाला, वो सूदी है। उसका तरीका ही अलग है, बैंक अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, उस बैंक अकाउंट में आपको हर 6 महीने बाद नफा, 6 महीने बाद जितने भी हफ्ते बाद आपको नफा दिया जाएगा, ये जायज नहीं। दुकानदार जब कोई माल बेचता है तो क्या होता है, वो फारिग हो जाता है, ग्राहक जो मर्जी करे उसका, वो ये तो नहीं कहता कि मुझसे माल खरीद लो मैं आपको नफा देता रहूंगा। तो यहां आप तिजारत नहीं रही, प्रीमियम बॉन्ड के अंदर अब तिजारत नहीं रही, अब ये कर्जे की सूरत आ गई है, उस पर वो नफा दे रहे हैं आपको। आगे चलते, क्रेडिट कार्ड। एक बंदा क्रेडिट कार्ड अकाउंट जब ओपन करता है तो वही कहता है आई एम एग्री टू पे इफ आई एम लेट टू पे इंटरेस्ट, अगर मैंने लेट हो गया तो मैं ये मुआहदा करता हूं बैंक से कि मैं सूद दूंगा, मुझे ये शर्त मंजूर है। एग्रीमेंट पर साइन करता है तो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट खुलता है, क्रेडिट कार्ड मिलता है और वो परचेजिंग कर सकता है। फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का फर्क तो पता है ना सबको, डेबिट कार्ड कर्जा नहीं होता, आपके अपने पैसे होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर बैंक का पैसा होता है, आपको 40 दिन के अंदर वापस करना होता है। तो क्रेडिट कार्ड का जब आपने एग्रीमेंट किया और ये मायदा किया कि मैं उससे सूद दूंगा, तो ये एक गलती पाई गई, आपने सूद देने पर रजामंदी का इजहार किया है। एक हदीस पाक में है कि समाना आएगा कि सूद से बचना, लो सूद में लोग मुब्तला हो जाएंगे, खुलासा ये। तो अब देखिए अच्छा खासा आदमी ये मायदा साइन कर रहा होता है, मैं दूंगा, मैं राजी हूं उस पर। अब अगर वो लेट कर देता है पेमेंट, तो अब दूसरी गलती पाई गई कि उसने, अब बैंक ने ज्यादा पैसे लेने उससे, अब दूसरी गलती पाई गई कि उसने जो पैसे बैंक को दिए इजाफी, वो सूद इसने दिया, सूद देने का गुना पाया गया। कॉरपोरेट लेवल पर या ट्रेवल की दुनिया के अंदर एक चीज पाई जाती है कि ये आईटा कंपनियां जो होती हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप करोड़ों का वो बिजनेस करोगे और आप फ्रॉड भी कर सकते हो, तो जो कस्टमर है वो परेशान हो जाएगा, आप हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाओ। ट्रेवल कंपनियों के लिए ये बाउंड किया होता है गवर्नमेंट ने कि हमारे पास इतने करोड़ रुपए आपने जमा करवाने हैं तो हम आपको लाइसेंस देंगे। पता चला कि जनाब आपने जाली टिकट बेच के आप फरार हो गए, हम वहां से फिर आपकी रिकवरी कर लेंगे। वो कहता है कि मेरे पास तो यही 1 करोड़ रुपए और मेरे बिजनेस में लगाए हुए हैं, मुझे क्या जरूरत है मैं 5 करोड़ रुपए जमा करवाऊं या 1 करोड़ रुपए जमा करवाऊं। वो बैंक के पास जाता है, बैंक कहता है ठीक है आपके ब्याह पर हम जमा करवा देते हैं, बस आप हमें महीने का ऐसा देते रहिएगा। अभी कैलकुलेशन करता है, मैं 1 करोड़ रुपए जमा करवाता हूं यहां पर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 करोड़ से मैं बिजनेस करता हूं तो मैं महीने का 10 लाख रुपए कमा सकता हूं, बैंक को मुझे देने पड़ेंगे 5 लाख रुपए, मुझे तो फायदा हुआ, मेरी रकम भी बाउंड नहीं हुई और मुझे 5 लाख महीने का फायदा हो रहा है। वो कहता है बैंक को आप मेरी तरफ से रकम जमा करवा दो, मैं आपको 5 लाख रुपये दिया करूंगा। तो इसने बैंक को किस बुनियाद पर पैसे दिए? जो कर्जा बैंक ने इसके नाम पर दिया है उसके ऊपर पैसे दिए? ये हज उमरे के कारवान टूर चलाने वाले ये सब ये काम कर रहे थे। काम से काम कदस है और उसके अंदर बैकग्राउंड पर एक ऐसा मायदा उन्होंने किया हुआ है कि जिसमें वो सूद दे रहे होते हैं। तो ये हमारी मजबूरी है भाई। आप 100 आजियों का कोटा भी कराची में कंपनी बिकी है, 100 आजियों का कोटा 7 करोड़ का फरोख्त हुआ है। आपको इतना पैसा है कि आप 7 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, आप 1 करोड़ रुपए की डिपॉजिट जमा नहीं करवा सकते? नहीं करवा सकते तो आधा कोटा बेच दें, कितना बिक जाएगा? अगर 7 करोड़ की फरोख्त हुई है तो वो 3.5 करोड़ का बिक जाएगा, आपका पैसे आ जाएंगे, आप थोड़ा नफा कम कमा लें। सूद से बचना आसान है। आप कहें नहीं जी मैंने लग्जरी लाइफ गुजारनी है, हैं? उमरे पे जाके मैंने 5 स्टार होटल में दिल्ली का 2000 दिरहम पे करना है, मैंने पूरा महीना वहां मक्के मदीने की बरकतें लूटनी है, हलाल रकम से छोटे से जो है ना वो 2 स्टार होटल के अंदर भी आप जाके रह लेंगे तो मक्के मदीने की बरकतों का ताल्लुक 5 स्टार होटल से तो नहीं है ना, तो काबे के नूर से, गुम्बद खजरा के नज़ारों से, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में की जाने वाली इबादतों से उसका ताल्लुक हो। तो हमने कुछ चीज़ों को इस तौर पर अपनी मजबूरी बनाया होता है जी मेरा स्टेटस जो है वो नीचे आ जाएगा। अच्छे भले घर में रह रहे हैं, सूद पर पैसा लेके बंगला लेंगे, जी मेरी जरा पीआर बन जाएगी। यानी मजबूरी में भी सूद लेना आम हालात में जायज नहीं है, सूदी कर्जा लेना। कुछ सूरतें उन्होंने बयान की हैं, वो जिस तरीके से डॉक्टर होता है ना, पूछता है कि आपको टीका रास आएगा या नहीं आएगा, पहले बताएं, पहले लगवाया है, अब अपनी कैफियत बताते हैं। तो इसी तरीके से एक मुफ्ती के पास जाकर बंदा अपनी कैफियत बताता है कि मेरी ये मजबूरी आ गई है, अब मेरे लिए क्या जायज होगा। कुछ सूरतें ऐसी मुमकिन निकल आए, कुछ सोते बयान की गई हैं, लेकिन यहां क्या जरूरत है? आप उस हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं कि कुरान कहता है कि सूद जो लेना है वो अल्लाह ताला से जंग है। तो फिर कहते हैं आप वो ट्यूमर हो गया है, वो फारिज हो गया है, वो कैंसर हो गया है, तो जो जिस्म हराम से प्रवेश पाएगा क्या होगा उसके अंदर? अरबी का एक मुहावरा है, फर्रा मिनल मतरी कामा तहतल मिजाब, बारिश थी उनका रे कपड़े गीले हो जाएंगे, किसी चीज के नीचे खड़े हो जाते हैं तो यहां आके खड़ा हो गया। ये था परनाला, वहां तो छींटे आने थे, यहां पूरा इसने भीग जाना है। तो बाज औकात आदमी किसी काम को सही करने जा रहा होता है, इतनी बड़ी गलती करता है कि उससे पहले वाली गलती से कई गुना ज्यादा हो जाती है। ये कब होता है कि जब वो अपने आप सोच रहा होता है यूं कर लूं, हाँ यूं कर लेता हूं, खुद ही मुंसिफ, खुद ही जज, खुद ही सब कुछ। मोबाइल कंपनियों ने एक अकाउंट शुरू करवाया कि जनाब आप 2000 रुपए जमा करवा दें हमारे पास, रोज के इतने 100 फ्री मिनट है जनाब, बड़ी मेहरबान होगी कंपनी। उसने ये 2000 रुपए किसी तजारत के बदले में नहीं लिए, ये क्या है 2000 रुपए हमारे, कंपनी के ऊपर कर्जा है, काबले वापसी है, जब चाहे वो गाहक निकाल सकता है। कर्जा ना देता तो ये नफा ना मिलता, पैसा तो हाथ में नहीं आ रहा लेकिन एक बेनिफिट मिल रहा है, ये बेनिफिट सूदी बेनिफिट है।
प्राइवेट कंपनीज में प्रोविडेंट फंड एक होता है, उसमें ये होता है कि 8% हमारी सैलरी से काटा जाता है और 8% एक्स्ट्रा कंपनी डालती है और साल के बाद वो मिलता है। तो जो एक्स्ट्रा कंपनी डालती है क्या वो सूद में है क्या? नहीं नाजायज।
जो कंपनी डालती है वो आपके एग्रीमेंट का हिस्सा होता है, यानी आपको सैलरी देती है मिसाल के तौर पर 30,000 रुपए कैश और 8% वो आपको अलग से जमा कर रही है, आपके एग्रीमेंट में होता है कंपनी ये करेगी, वो उजरत का हिस्सा है। जो पैसे प्रोविडेंट फंड में कंपनी डालती है वो हलाल है, लेकिन जो पैसे बैंक में इजाफी जमा हो जाते हैं वो हलाल नहीं है।
सच बोलता हो जो एहसान।